मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 24 जुलाई 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में आज मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा अपने उसी विषय पर जो फ्राइडे का हमारा विषय था। फ्राइडे को हम लोगों ने निजता का अधिकार, इस पर थोड़ी सी बात की थी, लेकिन वह बात पूरी नहीं हो पाई थी। मतलब यूं कह लीजिए कि मेरा मन भर नहीं पाया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप सबके साथ न्याय नहीं कर सका हूं। मैंने इशारे के तौर पर आप सबको इसका संकेत भी दिया था, तो आज मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, खासकर उसके जो बेसिक्स हैं या कह लीजिए उसके जो फाउंडेशंस हैं, अभी की जो हमारी निजता के अधिकार को लेकर के जो बहस हो रही है उस पर थोड़ी सी मैं और चर्चा करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आइए पहले हम न्यूज देख लेते हैं। इससे पहले कि आप मेरी बात सुने, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि यदि आपने रेडियो न्यूज सुनी है, और सुनना ही चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुनी भी होगी, तो उसमें कौन सी खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है? चलिए, अगर आप थोड़े से लंबे समय से मेरे इस डेली ऑडियो को सुन रहे हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स, लंबे समय का मतलब ये भी नहीं कि कोई 2-3 साल, 6 महीने में मानता हूं, अगर आप 6 महीने से सुन रहे हैं तो ये आपके पास अवसर है जब आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि देखिए, एक तो आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं, उस तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे, अगर मेरी बात पर आपको यकीन है तो नोट कर रहे होंगे, उस राह पर आप चल रहे होंगे। ये तो एक दिखाई गई राह है, राइट? लेकिन मेरा उद्देश्य रोज राह दिखाना नहीं है। सच पूछे तो मेरा उद्देश्य आपको मछली पकड़ना सिखाना है। मैं ये नहीं चाहता कि रोज मैं आपकी थाली में मछली परस दूं, जैसा कि चाइना की कहावत है, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूं, जिसे आप कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। तो मेरा जो अंततः उद्देश्य है वो यही है फ्रेंड्स, कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, न्यूज और न्यूज़पेपर्स से अपने लिए कैसे इम्पोर्टेंट घटनाओं का चयन करना चाहिए, और साथ ही जब आप उनका चयन कर लेते हैं तो उसमें से किन तत्वों पर, किन तथ्यों पर फोकस करना चाहिए, यह क्षमता मैं आपके अंदर डेवलप कर सकूं। तो यदि आप 6 महीने से मुझे ईमानदारी के साथ सुन रहे हैं और आपकी कोशिश भी यह है कि मैं अपने को बिल्डअप करूं, मेरी क्षमता बढ़े, तो आज एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप कल के न्यूज के आधार पर थोड़ा सा चयन करें कि मैं किस न्यूज की चर्चा करने जा रहा हूं, या कोई न्यूज है भी या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक है, और अगर है तो वो न्यूज कौन सी है, और अगर आपको न्यूज समझ में आ गई तो फिर अगली बात यह है उस न्यूज में क्या क्या है। आप थोड़ा सा इसे सोचें, अपने दिमाग में ले आए, अगर आपके दिमाग में तुरंत उत्तर नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए इस ऑडियो लेक्चर को बंद कर दें और फिर अपना उत्तर सोचने के बाद चालू करें और देखिए कि वो मैच करता है या नहीं करता है। मित्रों, आप घबराएं नहीं, परेशान न हो, अपना संतुलन बनाए रखें। अगर आपने 6 महीने तक इसके साथ ईमानदारी बरती है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इसका उत्तर जो मैंने अभी प्रश्न पूछा है दे लेंगे, उसमें मुझे कोई कतई किसी तरह का संदेह नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक छोटे से पॉज के बाद आइए अब मैं बात करता हूं न्यूज की। अक्सर आपने देखा होगा कि जब मंडे को हम लोग न्यूज की बात करते हैं तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टियां होती हैं, अखबारों में भी फिर कोई खास नहीं होता है, तो क्लिपिंग्स की संख्या भी आप देखेंगे कि मंडे को काफी कम होती। संडे के अखबारों में तो आपने देखा है कि सबके अपने स्पेशल इशू निकलते हैं संडे के आधार पर, एडिटोरियल कमेंट्स भी नहीं होते हैं संडे को, तो फिर आपके मंडे को का जो सुबह का अखबार आता है उसके लिए कुछ ज्यादा और बच नहीं जाता है सैटरडे संडे छुट्टी होने के कारण। फिर भी एक घटना घटी इस बीच में, और वह सिविल सर्विस के लिए एक बहुत हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें दे गई, और घटना यह है कि हमारे राष्ट्रपति जी का कल विदाई समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। यह घटना है, एक छोटी सी घटना है, इस घटना का कोई संबंध आपके जनरल नॉलेज से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उस विदाई समारोह में जो राष्ट्रपति जी का जो एड्रेस था उसमें उन्होंने डेफिनेटली 2-3 बहुत बड़ी बातें कही, और वो किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, अगर आप सामान्य तरीके से सुनेंगे तो ठीक है, कहते रहते हैं विदाई समारोह है, औपचारिक भाषण देना ही देना है, तो उन्होंने भी दे दिया, आप इसको इस रूप में ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। नो डाउट कि वो एक औपचारिकता ही है, लेकिन छोटी औपचारिकता नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रपति 5 साल के बाद विदा हो रहे हैं और सेंट्रल हॉल में यानी कि संसद उन्हें विदाई दे रही है, यानी कि हिंदुस्तान पूरा देश उन्हें विदाई दे रहा है, और ऐसे समय में राष्ट्रपति अपना विदाई भाषण दे रहे हैं, राइट? तो जो विदाई भाषण वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चाहे वो अपने 5 साल के अनुभवों का निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हों या फिर पूरे अपने पॉलिटिकल जीवन का निचोड़ दे रहे हों, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति रिटायर नहीं हो रहा है, राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर प्रणब मुखर्जी जी जैसे रिटायर व्यक्ति रिटायर हो रहे हो, जिनका इतना लंबा संसदीय जीवन का अनुभव रहा है, सरकार के अलग अलग पदों पर इतने लंबे समय से रहे हों और एक बहुत ही सम्मानित राजनेता रहे हों, तो फिर उनका कद और कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इस रूप में व्यक्ति को लेना चाहिए, पहली बात, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस रूप में हमारे देश के सभी नागरिकों को लेना चाहिए। अब आप देखें कि उन्होंने क्या बातें कही। उन्होंने दोस्तों 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण कही है। मैं सिविल सर्विस की दृष्टि से कह रहा हूं, है ना, राष्ट्र की दृष्टि से नहीं। और नो डाउट अगर कोई बात सिविल सर्विस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो मान के चलिए वो राष्ट्र की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन और कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो राष्ट्र की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट हो लेकिन सिविल सर्विस के लिए हम फिर उसे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट मानते हैं। मित्रों, उन्होंने 3 बातें जो कही हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। एक, उन्होंने अध्यादेश के बारे में बात कही, ऑर्डिनेंस के बारे में, कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये समय समय पर बिना जब तक कि बहुत मजबूरी नहीं हो जाए जारी नहीं किए जाने चाहिए। नंबर 1, इमरजेंसी में ही जारी किए जाने चाहिए। इमरजेंसी का मतलब आपातकाल की स्थिति नहीं है कि राष्ट्र में आपातकाल लगा हुआ है, लेकिन ये एक मुद्दा है जिस पर हम बात कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो वित्तीय मामले हैं, जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उन पर तो जारी ही नहीं किए जाने चाहिए, ऑर्डिनेंस नहीं जारी किया जाना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर कोई मामला संसदीय समिति के पास है ना, पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास है, आपको मालूम होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी हुई है, तब उस पर भी अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। ये उन्होंने 3 बातें कही अध्यादेश के लिए। अब आप देखें कि 3 बहुत क्लियर कट पॉइंट्स, लेटेस्ट पॉइंट्स आपको मिल गए हैं अध्यादेश को लेकर। मित्रों, इस अध्यादेश की तैयारी आप कॉन्स्टिट्यूशन किताबों से कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदे राष्ट्रपति के अधिकार के तहत अध्यादेश है। और अब दूसरी जो तैयारी होगी वो पॉलिटी के तहत होगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी तो हो गई, किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, कितने दिन तक जारी रहता है, फिर लागू करना है तो उसको कैसे आप लागू करेंगे, अदरवाइज जो कैसे खत्म हो जाएगा, तो ये सारे के सारे जो प्रावधान है ये तो आपके दिए हुए हैं संविधान की किताब में, आप पढ़ सकते हैं। तो संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन किया क्या जा रहा है ये उसका उसकी पॉलिटी हो गई। तो हमारे जो राष्ट्रपति जी ने बात कही है वो पॉलिटी की बात कही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कही है, और वो उनके अपने अनुभव से आया हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण 1 पॉइंट कि अध्यादेश एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। दूसरे, उन्होंने संसद के बारे में बात कही, जो हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो संसद है वो विचार विमर्श की एक जगह है, फोरम है, वहां विचार विमर्श किए जाने चाहिए। हमारे यहां जो कानून बन रहे हैं, देखा जा रहा है कि उन कानून के लिए, उन कानून पर एक गंभीर बहस जो होनी चाहिए वो गंभीर बहस नहीं हो रही है, वो ऐसे ही आनन फानन में कानून पारित कर दिए जा रहे हैं, तो इससे जो जनता का विश्वास है संसद के प्रति वो कम हो रहा है। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर संसद का कार्य बाधित होता है तो इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो विपक्ष का होता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि इस पर भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की थी। तो ये आपका 2nd टॉपिक है, पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है जिस पर आप सबको विचार करना चाहिए, इन्हीं सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही थी जीएसटी को, उन्होंने अब तक जो हमारा संघात्मक स्वरूप है उसका बहुत अच्छा उदाहरण माना, और इस पर तो हम लोग काफी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कि ये 3 पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 टॉपिक्स सबसे महत्वपूर्ण है, और मित्रों, यदि कोई दूसरा महत्वपूर्ण विषय नहीं आया तब डेफिनेटली जो ऑर्डिनेंस वाला जो टॉपिक है इस पर हम लोग मुख्य विषय के अंतर्गत कभी बात करेंगे। बहुत संभव है कि अगर कुछ दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई या समाचार नहीं आया तो हम लोग इसी पर बात कल ही कर सकते हैं। दोस्तों, अब इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट पर आऊं, एक दो बातें आपसे और शेयर करना चाहूंगा, और वो है कि मैं आपको आज इंडियन एक्सप्रेस की क्लिपिंग्स इंडियन एक्सप्रेस आज प्रोवाइड कर रहा हूं जो 22 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। महाराष्ट्र ने एक सोशल बायकॉट एक्ट पारित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पारित किया क्या, यह 2016 में पारित हो गया था लेकिन राज्यपाल ने फिर इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया था और राष्ट्रपति जी ने पिछले सप्ताह ही इसे अपनी स्वीकृति दे दी है, यानी कि वो एक्ट बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये सच पूछे तो जैसे पंचायतें होती है ना, जैसे हरियाणा की खाप पंचायतें जिन्हें हम कहते हैं, तो चूंकि महाराष्ट्र सरकार का है तो ये महाराष्ट्र राज्य में ही लागू होगा, तो महाराष्ट्र में भी इसी तरह से कास्ट बेस्ड पंचायतें हैं, जाति पर आधारित, जिसे आप समुदाय कह सकते हैं। तो उसमें किसी व्यक्ति का सोशल बायकॉट कर दिया जाता है, वो जो पंचायतें हैं वो व्यक्ति को सजा दे देती हैं। तो उसे रोकने के लिए ये एक्ट आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है, बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अखबारों में भी इस पर कुछ नहीं आया। 2016 वगैरह में थोड़ा बहुत आया होगा, इसके बाद नहीं हुए, तो शायद अब, हालांकि इसको एक सप्ताह हो गए हैं, चर्चा नहीं हुई है। तो ये मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और इसका जो हिंदी फॉर्म होगा, हिंदी अनुवाद होगा, वह भी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन इसे आप ध्यान से देखिएगा। एक मैं आपको आर्टिकल और उपलब्ध करा रहा हूं दोस्तों, ये दैनिक भास्कर, आज के दैनिक भास्कर में छपा है। ये खासकर खुशी को लेकर है, सफलता को लेकर है, सक्सेस, हैप्पीनेस। ये आपके जो मेंस का फोर्थ पेपर है उसमें हैप्पीनेस या सक्सेस जैसी इन सब चीजों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपको एक थोड़ा सा नया नजरिया मिलेगा। देवदत्त पटनायक जी का ये लेख है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी ये अच्छा लगा है और आपको भी इसे पढ़ना चाहिए। जो दूसरे लेख हैं मित्रों, वो फिर आप और लेख और एडिटोरियल कमेंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से आप उन्हें पढ़ लें। अब मैं आता हूं निजता के अधिकार पर, जो थोड़ी सी बातें रह गई हैं उनकी चर्चा करता हूं। फ्रेंड्स, अब देखिए कि मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए, वो ये कि जो निजता के अधिकार पर जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनकी आपत्तियां क्या हैं, है ना। हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लें, आप ज्यादा उलझिएगा मत प्लीज। मुझे डर यही लगता है स्टूडेंट से कि अगर उनको बता दिया जाए कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो उस पर एक तरीके से एक्सपर्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। आप जनरल नॉलेज के तहत इसे पढ़ रहे हैं तो सामान्य समझ ही आपके लिए पर्याप्त होगी। तो आइए हम दो तीन उन पॉइंट्स को देखते हैं कि जो नागरिक है, कह दीजिए मैं भी हूं, आप भी उसी में शामिल है, तो हम सबकी चिंता क्या है, आपत्ति क्या है। एक तो आप जान चुके हैं कि बेसिकली सरकार जो आधार कार्ड और दूसरी चीजों में हमारे अंगूठे के निशान ले रही है, अंगूठे के निशान, आप आधार कार्ड बनाने जाइए तो आपके अंगूठे के निशान लिए जाएंगे, राइट। आपके आंख की पुतलियों के निशान लिए जाते हैं, ये माना जाता है कि आंख की पुतली एक दूसरे से नहीं मैच कर सकती, अंगूठे के निशान एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते। हमसे और दूसरी ढेर सारी जानकारियां मांगी जाती हैं, तो ये हमारी निजता है ना, ये हमारी प्राइवेसी है। तो ये जो प्राइवेसी है हम किसको सौंप रहे हैं, सरकार को सौंप रहे हैं, मोबाइल कंपनियों को सौंप रहे हैं, या और जो दूसरी कंपनियां हैं हम उन्हें सौंप रहे हैं। जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी यही होता है। तो अब ये हमारी जो निजी संपत्ति है, या कह लीजिए हमारी जो निजी पहचान है, हमारी प्राइवेसी है, ये पब्लिक डोमेन में चली गई, पब्लिक डोमेन में चली गई, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकार हो, हमारे हाथ से वो चीज निकल गई। अब हमारी चिंता ये है कि इसकी सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि आज के समय में आप अलग अलग चीजें सुनते होंगे कि डेटा चोरी हो गया, कंपनियां इसको लेकर के गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, आपराधिक जगत इसका इस्तेमाल कर सकता है, आपके जो मोबाइल हैं, जो आपके जो बैंक अकाउंट हैं उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, उनकी हैकिंग हो सकती है। तो अब इसकी क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा, कुल मिलाकर यह चिंता है और कुछ भी और कोई चिंता नहीं है। अब आप देखिए कि जब सरकार इसके पक्ष में दलील देती है या इसके पक्ष में जो इसके समर्थक हैं वो क्या बात करते हैं, उनका यह मानना है कि देखिए आधार नंबर से हर व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान हो जाती है। जैसे कल ही न्यूज में, रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो गलत पहचान पत्र लेकर घूम रहा था। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले जब आप फॉरेन कंट्रीज जाते थे तो आपको, जब आप दूसरे देश में एंटर कर रहे हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था, राइट। फिर जब आप दूसरे देश से अपने देश के लिए उड़ान भर रहे हैं तो फिर आपको वहां फॉर्म भरना पड़ता था। फिर अपने देश के एयरपोर्ट पर आकर के फिर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था कि मैं अपने देश में आ गया हूं, तो सरकार के पास रिकॉर्ड होता था। अब फॉरेन कंट्रीज ने थोड़ा सा पहले उसे खत्म कर दिया था फॉर्म भरने की परंपरा को, और भारत सरकार ने भी अभी कुछ दिनों पहले ही उसे खत्म किया है, क्योंकि अब आप जो सरकार है, दोनों देश जो एम्बेसीज हैं, जिसने पासपोर्ट दिया है आपके अपना, आपका अपना देश, और जिसने वीजा दिया है या जहां आप दूसरे देश में जा रहे हैं, उन दोनों के पास हमारे आंख की पुतलियों के चित्र हैं और हमारे अंगूठे के निशान हैं। तो जब मैं दूसरे देश में एंटर करता हूं तो मेरी आंख की पुतलियों को मैच कर लेते हैं, मेरे अंगूठे के निशान को मैच कर लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये सही व्यक्ति है। फिर उनके पास मेरा नंबर होता है, उसे मैच करके मुझे जाने की इजाजत दे देते हैं, मुझे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने देश में लौटता हूं तब भी ऐसा ही होता है। तो ये एक बहुत ही विशिष्ट पहचान हो जाती है। तो इस विशिष्ट पहचान के कारण फिर जो धोखाधड़ी के मामले हैं, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, ये रुक जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है। फिर आप देखिए कि किसी की जो पहचान है वो ऑनलाइन, अब ऑनलाइन कितनी सारी चीजें होने लगी हैं, तो ऑनलाइन भी पहचान हो जाने से उनका सत्यापन हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इसी की वजह से अब बहुत सी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार होते थे वो अब लगभग मतलब खत्म तो नहीं कहना चाहिए, काफी कम हो गए हैं। जैसे आप देखिए कि 23 करोड़ लोगों को अब जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं और सरकार की अन्य योजनाओं से जुड़े हुए हैं, जो भुगतान हो रहा है वो अब डिजिटल माध्यम से हो रहा है, उनके खातों में हो रहा है, तो इससे भ्रष्टाचार पर बहुत ज्यादा अंकुश लगा है। तो दोस्तों यह सरकार का एक सामान्य सा पक्ष है, या जो इसके पक्ष में बात कहते हैं वो ये तर्क देते हैं, राइट। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है। जो लोगों की जो चिंता है इनफैक्ट वो ये है कि इस निजता की रक्षा के लिए सरकार के पास कोई बहुत ही प्रबल, बहुत अच्छा कानून नहीं है, कोई बहुत ही मजबूत कानून नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखिए ऐसी व्यवस्था तो होगी कि ऐसे कानून बनाए जाएं जो सरकार पर भी बाध्यकारी हो और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन पर भी बाध्यकारी हो, कि यदि डेटा कहीं से लीक होता है, अगर हमारी पहचान कहीं से चोरी होती है, गायब होती है, दूसरों को बताई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी होगी। फिर उनको क्या सजा दी जा सकती है, उसका उनसे क्या हर्जाना वसूल किया जा सकता है, ये एक कानून की बात है। तो अब इस पर बहस चल रही है और पूरी राष्ट्रीय बहस भी शुरू हो गई है, ये केवल कोर्ट में होने वाली बहस नहीं है। तो डेफिनेटली इस मंथन से कुछ न कुछ तो सार निकलेगा ही, तो लेट अस वेट एंड होप समथिंग बेस्ट। तो मित्रों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बकायदे आपको पक्ष विपक्ष में पॉइंट्स नोट करते जाना चाहिए। तो मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो स्वागत का चरण है। तो मैं स्वागत करता हूं अपने 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं विजय कुमार रजक, आप धनबाद झारखंड से हैं, सौरभ सिंह राठौर, आप ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और श्रेयांश, आप डिंडोरी मध्य प्रदेश से हैं। तो आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।